मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए अभी कुछ जो नए प्रावधान किए गए हैं इस पर बातें करूंगा, लेकिन दूसरी खबरों को भी आइए थोड़ा देख लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा और इससे पहले मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो बाकायदे शुरू हो गई है। ये जो बैठक है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रही है। चूंकि ये मंत्री स्तरीय बैठक है तो स्वाभाविक है कि भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां गए हुए हैं। 5 साल के बाद ये बैठक हो रही है क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह के कारण आप जानते हैं कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, तो इसीलिए बैठक नहीं हो पाई। 5 साल के बाद यह बैठक हो रही है। आपको ध्यान होगा कि इस बैठक के बारे में मैंने आप सबको पहले से ही सतर्क कर दिया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और मैंने विस्तार के साथ आप लोगों से चर्चा की थी कि इस बैठक के लिए भारत ने क्या प्रस्ताव दिए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। भारत ने बहुत क्लियरली अपने आपने के लिए मंशा जाहिर कर दी है, अपनी मंशा की जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का संकल्प है उसके विरुद्ध भारत किसी भी तरह का कोई दबाव स्वीकार नहीं करेगा। आप एक वार्ता का नाम सुनते होंगे, दोहा वार्ता। दोहा वार्ता जब हो रही थी तो उसमें बहुत सी चीजें फाइनल नहीं हो पाई थी, उसमें कृषि सब्सिडी और इन सब का भी मामला था, तो एक प्रकार से दोहा वार्ता असफल सी ही रही थी और उसका नेतृत्व तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि भारत ने किया था, क्योंकि भारत पर ही सच पूछे तो जो विकासशील देश हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं, वे आप यूं करिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि खाद्य सुरक्षा है, खाद्य भंडारण है, सब्सिडी का मामला है, मत्स्य पालन वगैरह के जो बिंदु हैं इन सब पर इस बैठक में चर्चा होगी। देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है और बाकायदे थोड़े से ध्यान से आप इस टॉपिक पर अपनी नज़र टिकाए रखें। डेली ऑडियो लेक्चर में जो भी संभव हो सकेगा डेफिनेटली हम लोग इस पर बातें करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। यह ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस। इसके बारे में दूरदर्शन न्यूज में काफी विस्तार से आया था। क्या आपने दूरदर्शन न्यूज पर ध्यान दिया या कि ऐसे ही छोड़ दिया, अब आप जाने। देखिए, इसके आधार पर ना आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि सच में जो आप आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर कितनी गहरी आग है। अगर आप टालते रहेंगे कि अरे ठीक है बाद में देख लेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है एक दिन नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आपकी आग है वो उतनी ज़्यादा प्रज्वलित नहीं है जितनी कि आईएएस के लिए होनी चाहिए थी। इन स्पेस के बारे में बहुत डिटेल में उसमें बातें बताई गई थी, बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया था, फिर बकायदे डिस्कशन भी हुआ था और जो कुछ इस क्षेत्र के जो कंपनी के मालिक हैं वो भी आए थे और यंग थे सब और अपनी अपनी बातें रख रहे थे इन स्पेस। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इन का मतलब है इंडियन नेशनल। इन हो गया आई, इंडियन एंड नेशनल इन, इनके बाद फिर डैश है, ये बिल्कुल इस सही तरीके से आपको लिखना चाहिए मेंस में अगर आता है, तो फिर है स्पेस। तो स्पेस तो देखिए अपने आप में अंतरिक्ष है ही है और सच पूछे तो इसका संबंध भी सीधे सीधे अंतरिक्ष से ही है, लेकिन स्पेस का भी एक फुल फॉर्म है। स्पेस का क्या है, एस का मतलब तो सीधे स्पेस हो गया, पी का अर्थ है प्रमोशन, यानी कि अंतरिक्ष का प्रमोशन करने वाला। मैं आपको कई बार बीच बीच में बताता हूं कि अगर हम संस्थान के नाम को थोड़ी देर रुक करके अच्छे तरीके से सोच लें, समझ लें, अर्थ पकड़ लें, तो ढेर सारी चीज़ें तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है और कम से कम प्री में तो आपको इससे काफ़ी मदद मिल ही जाती है, राइट। तो एस का मतलब होगा स्पेस, पी का मतलब हो गया प्रमोशन एंड ए का मतलब है अथराइजेशन का मतलब है कि आप किसी को कोई अधिकार देते हैं ना, अथॉरिटी देते हैं, मतलब आप स्वीकृति देते हैं अगर हम सरल शब्दों में कहें तो। और सी का है सेंटर, तो इसका पूरा नाम हो गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर। दोस्तों, इस पर बहुत विस्तार के साथ आया था, अहमदाबाद में स्थापित ये किया गया है। तो दोस्तों, ये जो अथराइजेशन सेंटर है, ये इसके लिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनाई गई है, और वो ये है कि खासकर अब आप जानते हैं कि धीरे धीरे भारत डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन को महत्व दे रहा है, तो अंतरिक्ष में भी अब वह जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी संस्थान हैं, उनको मदद देगा। तो ये जो इन स्पेस है, यह बकायदे एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। सिंगल विंडो नोडल एजेंसी का क्या मतलब हुआ? सिंगल विंडो यानी कि वहां एक ही खिड़की है। मतलब अगर आपको स्पेस से संबंधित कोई तैयारी करनी है, कुछ और जानकारी चाहिए, कंपनी बनानी है, जो कुछ भी करना है, बस आप एक यहीं पर चले जाइए, सारे काम यहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 15-20 जगह पर जा करके भटक रहे हैं। सिंगल विंडो, और खासकर जो निजी संस्थान है, ये उनकी मदद करेगी। और इसी के जरिए ही जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, या कह लीजिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे बकायदे अपने जो उपग्रह हैं, उपग्रह लॉन्च कर सकेंगे। अब आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण दायित्व अब इस संस्थान को सौंपा गया है। अब आप देखिए कि हम भारत के बारे में अब किस तरह का परिदृश्य अपने दिमाग में बना रहे हैं। हम ड्रोन हब की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर हब की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर आप यहां देख रहे हैं कि हम अंतरिक्ष में भी एक विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहे हैं। डिफेंस में हमने ओपन कर दिया है, और कितना ज़्यादा हम डिफेंस के बारे में आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत, आप पाएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ अपनी प्लानिंग कर रहा है। और अगर अंतरिक्ष में भारत बहुत सफल हो सका, और अगर आपने डिस्कशन सुना हो, तो इसके जो हेड हैं वो बकायदे बता रहे थे कि किस तरीके से भारत में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे यहां चीजें सस्ती हैं और हमारे यहां इसके एक्सपर्ट हैं। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं, तो इसके हेड का जो नाम है वह है पवन कुमार गोयनका, इन स्पेस के ये चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको और भी कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने को मिले, तो आप बिल्कुल पढ़ेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है विज्ञापनों पर नए नियम। अखबारों में इसके बारे में लिखा गया है, और खासकर जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसने इस पर एडिटोरियल कमेंट भी किया है। तो आइए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, खासकर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तो है ही। देखिए, हमारे यहाँ एक बकायदे कानून बना हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये बकायदे बना हुआ है, राइट? पूरे के पूरे जो विज्ञापन की दुनिया है, इससे आप बहुत व्यावहारिक स्तर पर वाकिफ हैं, मुझे इसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो विज्ञापन आते हैं, किस किस तरह के विज्ञापन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं जिनका स्वास्थ्य पर सीधे विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे देश में मोटापा वगैरह, जंक फूड वगैरह के विज्ञापन आते हैं, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बकायदे पान मसाला, खासकर जो परिवर्तन किया गया है, वो पान मसाला ही इसके केंद्र में रहा है, क्योंकि पान मसाले की आड़ में खासकर इलायची और केसर वगैरह के विज्ञापन बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से विमल इलायची, विमल पान मसाला, और इसमें बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस इनका विज्ञापन करते हैं। देखिए, विज्ञापन का प्रभाव तो सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर होता ही है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, और स्पेशली जो बच्चे हैं, उन पर बहुत जबरदस्त रूप से होता है। और ये देखा जा रहा है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो बकायदे हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पहले से है। अब उसमें थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं, आप यूं कह लीजिए कि उसमें कड़ाई की गई है। हमारे पास विज्ञापन है, हमारे पास नियम है, कानून है, लेकिन इनफैक्ट सही तरीके से हम अपने उन कानूनों को इन विज्ञापनों पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो दो तीन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, मैं आपको उनकी चर्चा आपसे कर रहा हूं, क्या चुनौतियां रह जाती हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा कानून है, उपभोक्ता संरक्षण कानून, प्लीज इसे एक बार आप देख लें। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपका काम चल जाएगा। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अब ये नहीं पूछा जाता कि इस कानून के मुख्य तत्व बताइए और क्या इसके लक्षण है, इस तरह से बातें नहीं पूछी जाती। तो देखिए, अब क्या सबसे महत्वपूर्ण जो दो तीन प्रावधान किए गए हैं, हम उसमें देखेंगे। पहला तो ये है कि कि विज्ञापन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के अक्षर लिखे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह की भाषा और उसी तरह के अक्षरों का इस्तेमाल अस्वीकरण में भी किया जाए। अस्वीकरण का मतलब है डिस्क्लेमर, मतलब होता यह कि पहले अपना विज्ञापन कर देंगे और बाद में डिस्क्लेमर को बहुत छोटे से अक्षरों में कि प्लीज डिटेल में देखें प्लीज करके खत्म कर देंगे और बहुत तेजी के साथ खत्म कर देंगे। मतलब जो विज्ञापन का हिस्सा होगा वो तो देरी तक बकायदे रहेगा पर्दे पर, लेकिन जैसे अस्वीकरण की बात आएगी वो फटाक से उसको गायब कर देंगे ताकि आप पढ़ ही ना पाए। एक तो समय आपको कम मिलेगा, दूसरा वो इतने छोटे अक्षरों में लिखा होगा कि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि जो विज्ञापन छद्म भाषाओं इस्तेमाल करेंगे उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर वो विज्ञापन करेंगे। जैसे आप उत्पाद तो कोई बना रहे हैं, उसके बारे में लग रहा है कि विज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी और चीज का विज्ञापन कर रहे हैं और जिस चीज का आप विज्ञापन कर रहे हैं उस चीज पर रोक है। तो ये सब के सब बकायदे छद्म विज्ञापन के अंतर्गत आएंगे। तीसरी एक बात और भी कही गई है कि जो भ्रामक विज्ञापन होंगे जिसमें भ्रम पैदा होगा, बहुत स्पष्ट चीजें नहीं होंगी और जिनका विज्ञापन किया जा रहा है उन पर रोक लगी हुई है, तो बकायदे उसके लिए जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा और फिर दूसरी बार 50 लाख रुपए का तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये 3-4 महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं, लेकिन संकट क्या है आप देखिए, हमारे यहाँ बकायदे अभी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बकायदे है, लेकिन अभी वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर तो हम विज्ञापनों पर रोक लगा लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सोशल मीडिया पर हम क्या करेंगे, जो ऑनलाइन विज्ञापन है उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सके, तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। यह भी कहा जा रहा है कि समस्या विज्ञापनों की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो कानून है उन्हें कैसे उन विज्ञापनों पर लागू किया जा सके, इस पर हमें विचार करना होगा। तो एक आशा की किरण लोगों को दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको एडिटोरियल जो कमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। अखबारों में अगर आपको और भी कुछ पढ़ने को मिले, आगे हो सकता है कि इस पर लेख भी आपको पढ़ने को मिले, तो इसे आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानते हुए नोट्स तैयार कर लें, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में और केवल कुछ पॉइंट्स ही नोट करना सफिशियंट होगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं, इसके लिए हेत रावल अहमदाबाद से हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हेत रावल, आपके मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से आपका स्वागत करता हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं रीना, दीक्षा धाकर, रानी राय और वंदना वर्मा लखनऊ से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।